नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत आज स्वतंत्र लेबनान का विकास नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। नवीन लेबनान की रूपरेखा। फ्रेंच मैंडेट के अंत के पश्चात लेबनान बिल्कुल पृथक एवं स्वतंत्र राज्य बन गया एवं इसका शासन बिल्कुल अलग हो गया। फ्रेंच शासकों की नीति लेबनान को सीरिया के मुकाबले में बृहत्तर एवं समृद्ध बनाने की रही थी। अतः यह राज्य भूमध्य सागर के किनारे 3400 वर्ग मील में विस्तृत था और इसकी आबादी 13 लाख के लगभग थी। इसके अंतर्गत टायर, ट्रिपोली और बेरूत जैसे बंदरगाह थे। इससे सीरिया से पृथक होने पर भी लेबनान एक स्वतंत्र सत्ता एवं स्थिति बनाए रखने में सफल हुआ। आबादी में ईसाइयों की क्षीण बहुमत होने से मुसलमानों और ईसाइयों में पारस्परिक मेल एवं सद्भावना स्थापित करने का आरंभ से प्रयास हुआ। इसी हेतु राष्ट्रपति का पद एक ईसाई को और प्रधानमंत्री का पद एक मुस्लिम को आरंभ से ही मिलता रहा और यह एक परंपरा सी बन गई एवं इसे राष्ट्रीय समझौता नेशनल कन्वेंटमेंट कहा जाता है। राष्ट्रपति की अवधि 6 साल की एवं संसद की अवधि 4 साल की रखी गई। राष्ट्रपति के पद पर विशरा अल खुरी एवं प्रधानमंत्री के पद पर रियाद अल सुलह युद्धकाल से ही आसीन थे तथा युद्धोपरांत काल में भी काफी दिनों तक बने रहे। देश में एक सदनीय व्यवस्थापिका थी जिसके सदस्यों की संख्या 55 थी। इस तरह लेबनान का शासन तंत्र पूर्व नियोजित एवं सुदृढ़ था। अतः फ्रेंच शासन के अंत के पश्चात भी लेबनान स्वतंत्र विकास करने में सफल रहा। प्रारंभिक दिक्कतें। लेबनान को आरंभ में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीरिया से पृथक होने के कारण सीरिया के साथ नवीन आर्थिक संबंध, आयात कर के प्रश्न एवं सीमा संबंधी अनेक विवाद उठ खड़े हुए। देश में कई दल सीरिया के पूर्ण विलयन के पक्ष में थे। वास्तव में एंटन सादेह ने सीरियाई राष्ट्रवादी दल की स्थापना इसी हेतु की। इसके अतिरिक्त साम्यवादी दल तथा उग्र दक्षिणपंथी दल भी कायम थे। अतः यहाँ का वातावरण काफी विषाक्त था। देश में बेकारी तथा गरीबी थी और सीरिया से पृथककरण के आर्थिक व्यवस्था को जबरदस्त आघात पहुंचा था। देश में जनतांत्रिक शासन का प्रबंध था परंतु जनतांत्रिक परंपरा का अभाव था। निष्पक्ष निर्वाचन अत्यंत ही दुर्बल था तथा वयस्क मताधिकार की पद्धति स्वीकृत होने पर भी स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं थे। मताधिकार का आरंभ सांप्रदायिक था और देश में 40 भूमिपति परिवारों का काफी प्रभाव था और वे 40 परिवार के नाम से प्रसिद्ध थे। वैदेशिक क्षेत्र में भी लेबनान के सामने अरब राज्यों और पाश्चात्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रश्न था। ऐसी अवस्था में लेबनान के सामने आरंभ से ही कई दिक्कतें थीं जिसका समाधान आसान नहीं था। राजनीतिक विकास। युद्धोपरांत लेबनान में प्रथम आम निर्वाचन अप्रैल 1947 में हुआ। उसमें सत्तारूढ़ संवैधानिक दल की विजय हुई लेकिन निर्वाचन की निष्पक्षता संदिग्ध थी। अतः सितंबर 1947 ईस्वी में विरोधी दलों ने ट्रिपोली में एक सभा आयोजित की और संसद को भंग करने और नए निर्वाचन की मांग की। परंतु सरकार ने दमन का सहारा लिया। अनेक विरोधी जेल में ठूस दिए गए और 8 जुलाई 1949 ईस्वी को एंटन सादेह को मौत की सजा दी गई। पत्र पत्रिकाओं पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए और 1500 से कम ग्राहक संख्या वाले पत्र पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया। इस काल में विशरा अल खुरी राष्ट्रपति बने रहे और प्रधानमंत्री के पद पर रियाद अल सुलह भी बने रहे। सितंबर 1949 ईस्वी में विशरा अल खुरी पुनः 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। ऐसी अवस्था में मार्च 1950 ईस्वी में प्रधानमंत्री की हत्या का प्रयत्न किया गया। फलतः 1951 ईस्वी के अप्रैल माह में नया आम निर्वाचन कराया गया और इसके लिए एक सामयिक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई जिसकी अध्यक्षता हुसैन अल आवेनी ने को सौंप दी गई। इसके पहले निर्वाचन निष्पक्ष रहा किंतु इस बार भी बहुमत संवैधानिक दल को ही प्राप्त हुआ। परंतु कमाल जुम्बलत का प्रगतिशील समाजवादी दल, रेमंड एडे का राष्ट्रवादी दल के सदस्य एवं कैमिल सामू तथा पियर गमायल के समर्थक भी काफी संख्या में जीते। वास्तव में लेबनान के निर्वाचन में धार्मिक नेताओं, भूमिपतियों एवं धनिक वर्गों का जबरदस्त हाथ था। इन्हीं की मदद से संवैधानिक दल की जीत हुई थी। नए निर्वाचन के पश्चात प्रधानमंत्री का पद सभी अल सुलह को प्राप्त हुआ परंतु उसे शीघ्र ही एक जागरूक विरोधी दल का सामना करना पड़ा। जून 1952 ईस्वी में कमाल जुम्बलात और कैमिल सामू ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर संसद में एक समाजवादी एवं राष्ट्रीय मोर्चा कायम किया। जुलाई 1952 में मिस्र में जो क्रांति हुई उससे ये और भी प्रोत्साहित हुए। ये देश में राजनीतिक सुधारों की मांग करने लगे और 11 अगस्त को इन्होंने एक विराट सम्मेलन का आयोजन किया तथा राष्ट्रपति से पदत्याग की मांग की। 20 अगस्त को प्रधानमंत्री सभी अल सुलह ने इनकी अधिकांश मांगों को मान लिया और निर्वाचन पद्धति तथा शासन एवं अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का काम प्रकाशित किया। परंतु इस नीति से अधिकांश मंत्री एवं राष्ट्रपति भी असहमत थे, अतः मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। अब समाजवादी राष्ट्रीय मोर्चा ने आम हड़ताल की घोषणा कर दी। इसका देशव्यापी असर हुआ और सर्वत्र कार्य ठप्प पड़ गए। राष्ट्रपति ने सेनाध्यक्ष जनरल शिहाब को शांति स्थापित करने का आदेश दिया। अपने आदेश का पालन नहीं होने पर उसने 18 सितंबर को पदत्याग कर दिया और जनरल शिहाब को प्रधानमंत्री बना दिया। इस प्रकार बिना खून खराबी के सरकार का अंत हो गया और यह घटना इनकलाब के नाम से प्रसिद्ध है। शीघ्र ही 23 सितंबर को कैमिल सामू नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और प्रधानमंत्री के पद पर अमीर खालिद शिहाब की नियुक्ति हुई। इस तरह लेबनान को एक नई सरकार प्राप्त हुई। कैमिल सामू 23 सितंबर 1952 से लेकर 23 सितंबर 1958 ईस्वी। नवीन सरकार ने आरंभ में कई सुधार लाए। निर्वाचन विधि में एक सुधार लाकर सदस्यों की संख्या घटाकर 44 कर दी गई और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नारियों को मताधिकार दिए गए। तत्पश्चात प्रशासनिक क्षेत्र में भी कई सुधार लाए गए और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया गया, परंतु जिन मौलिक सुधारों की उम्मीद थी वे नहीं लाए जा सके। फलतः समाजवादी राष्ट्रीय मोर्चे में दरारें पड़ गई और कमाल जुम्बलात ने मई 1953 ईस्वी में राष्ट्रपति पर जनता के प्रति विश्वासघात का दोषारोपण किया। परंतु जुलाई 1953 ईस्वी में आम निर्वाचन में शासकीय दल की पुनः जीत हुई तथा अब्दुल्ला अल याफी प्रधानमंत्री बने। इसके समय में आंतरिक समस्याओं की जटिलता में और भी वृद्धि हुई। वास्तव में मुस्लिम धर्मावलंबियों के बीच की खाई इस काल में बढ़ती ही गई। स्वेज के राष्ट्रीयकरण समय देश के अंदर जबरदस्त उत्साह कायम हुआ और यहाँ की मुस्लिम जनता ने राष्ट्रीयकरण के पक्ष में प्रदर्शन किए, परंतु लेबनान की सरकार ने इसके पक्ष में कोई भी कदम नहीं उठाया। इसके कारण यत्र तत्र विद्रोह एवं अशांति के चिन्ह प्रकट हुए। फलस्वरूप देश में सैनिक कानून की घोषणा कर दी गई और प्रदर्शनकारियों को दबा दिया गया। परंतु अक्टूबर में जब इजराइल, ब्रिटेन एवं फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण किया तो सरकार के लिए निष्क्रिय रहना मुश्किल हो गया। अतः राष्ट्रपति शामू ने विविध अरब राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक नवंबर 1956 ईस्वी में बेरूत में आयोजित की, परंतु लेबनान अन्य राज्यों की तरह फ्रांस एवं ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने के लिए प्रस्तुत नहीं था। ऐसी स्थिति में अब्दुल अल याफी ने त्यागपत्र दे दिया और सभी अल सोलह ने नवीन मंत्रिमंडल संगठित किया। यह मंत्रिमंडल पाश्चात्य पक्षी था तथा इसके विदेश मंत्री डॉक्टर चार्ल्स मलिक अमेरिका में राजदूत रह चुके थे। फलतः अब पाश्चात्य देशों के साथ मैत्री संबंध और भी गहरा हुआ। उसने 1957 ईस्वी में आइजन हॉवर सिद्धांत को स्वीकृति दे दी एवं अमेरिकी अस्त्र शस्त्र लेना स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के अंदर बाथ दल एवं अरब एकता के समर्थकों ने इस मंत्रिमंडल के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पेश किया गया, परंतु स्वीकृत नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में जब 9 जून 1957 ईस्वी को लेबनान में आम निर्वाचन हुए तो मंत्रिमंडल के विरोधियों ने एक संयुक्त मोर्चा की स्थापना की और अभी 16 के मंत्रिमंडल के निर्वाचन काल में अपदस्थ करने की मांग रखी, परंतु 16 ने यह मांग अस्वीकृत कर दी। इससे यत्र तत्र विद्रोह एवं हड़तालें हुई, परंतु निर्वाचन में संयुक्त मोर्चे की हार हुई और सभी 16 का मंत्रिमंडल कायम रहा। इस तरह लेबनान अरब देशों की एकता संबंधी नीति से दूर भागता गया। फिर भी लेबनान में बाथ दल का भी काफी जोर था और वहां के अरब निवासी अरब एकता के पक्ष में थे। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में अशांति बनी रही। इस काल में 1 फरवरी 1958 ईस्वी को सीरिया तथा मिस्र को मिलाकर संयुक्त अरब गणराज्य की स्थापना हुई, जिसमें यमन भी शामिल हो गया। इसके विपरीत इराक और जॉर्डन का भी एक संघ मई 1958 ईस्वी में कायम हुआ, परंतु राष्ट्रपति शामू अरब एकता के आंदोलन से विमुख रहे और वे संविधान में परिवर्तन लाकर पुनः 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनने की तैयारी में लग गए। उनका कार्यकाल 23 सितंबर को समाप्त हो रहा था, इससे विरोधी दल को और भी चिंता हुई। अतः लेबनान में मई 1958 ईस्वी में आंतरिक विद्रोह की ज्वालामुखी फूट पड़ी। बेरूत एवं त्रिपोली में अमेरिकी सूचना कार्यालयों को जला दिया गया तथा लेबनान स्थित इन विद्रोहों ने बड़ा उग्र एवं व्यापक रूप धारण कर लिया, जिससे सरकार की स्थिति डमाडोल हो गई। लेबनान ने इसके लिए संयुक्त अरब गणराज्य को उत्तरदायी ठहराया तथा इस मामले को सुरक्षा परिषद में प्रेषित किया। 16 जून 1958 ईस्वी को परिषद ने लेबनान में एक प्रेक्षक दल भेजने का निर्णय किया और प्रधान सचिव डॉन हैमरसोल्ड को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया। परंतु हैमरसॉल ने 3 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश की तथा लेबनान के आरोपों को निराधार ठहराया। ऐसी स्थिति में 24 जुलाई 1958 ईस्वी को बगदाद संधि के गढ़ इराक में विद्रोहियों ने सरकार को उलट दिया। फलस्वरूप शामू ने अरब संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता की अपील की। 15 जुलाई को अमेरिकी फौजों का लेबनान में आगमन प्रारंभ हुआ और 20 जुलाई तक इनकी संख्या 10,000 तक पहुंच गई। इनके सामने विद्रोहियों का टिकना मुश्किल हो गया, परंतु अमेरिका के इस हस्तक्षेप के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हो गई। लेबनान के संसद अध्यक्ष अदल आसुरान ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को इसके लिए तार भेजा। लेबनान की सेना में भी इस हस्तक्षेप से असंतोष फैला। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने विदेशी फौजों को लेबनान से शीघ्र हटाने की मांग रखी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शामू को अपने मंसूबों का परित्याग करना पड़ा और उसने संविधान संशोधन की आशा त्याग दी। जनरल फुआद चिहाव। जुलाई 1958 ईस्वी को जनरल चिहाव नवीन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और इनके पदारोहण की तिथि 23 सितंबर रखी गई। सभी 16 ने प्रधानमंत्री का पद 6 अगस्त को त्याग दिया और रशीद करामी नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। 23 अगस्त 1958 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष अधिवेशन में विदेशी फौजों ने लेबनान से हटाने का प्रस्ताव पास हो गया। इसके पश्चात रशीद करामी ने भी इन्हें हटाने की मांग रखी। फलतः 28 अक्टूबर 1958 ईस्वी तक फौजें हटा ली गई। इस प्रकार सरकार की नीति में मौलिक परिवर्तन आया। अब शामू की पाश्चात्य पक्ष नीति का परित्याग कर दिया गया और 9 दिसंबर 1958 ईस्वी को लेबनान ने आइजनहावर सिद्धांत को भी अस्वीकृत कर दिया। लेबनान अरब राज्यों के प्रति सद्भावना एवं सहयोग पर जोर देने लगा। अतः 18 जनवरी 1959 ईस्वी को रशीद करामी ने अरब लीग के आर्थिक स्थिति की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की। इसी प्रकार लेबनान अरब लीग के माध्यम द्वारा अरब देशों के समीप आता गया। इसने इसराइल विरोधी अभियान में भी अरबों की मांग का समर्थन किया और इराक, सीरिया तथा संयुक्त अरब गणराज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। परंतु लेबनान के ईसाई अधिकांशतः पाश्चात्य पक्षी थे, अतः इस काल में लेबनान में आंतरिक उपद्रव होते रहे। पियर कमायल का फलांगिस्त दल सर्वदा इस क्षेत्र में गतिशील रहा। इसके कारण नवीन सरकार आंतरिक शांति कायम करने में पूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकी। 1964 ईस्वी में आम निर्वाचन द्वारा सरकार में परिवर्तन आया और चार्ल्स हेलू नए राष्ट्रपति बने। चार्ल्स हेलू इस समय प्रधानमंत्री का पद हुसैन ओवेनी ने संभाला, परंतु स्थिति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया। देश के अंदर मुस्लिम एवं ईसाइयों का मतैक्य नहीं रहने के कारण आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में लेबनान की नीति में दृढ़ता का अभाव पूर्ववत बना रहा। अतः 20 जुलाई 1965 ईस्वी को ओवेनी ने पदत्याग कर दिया और रशीद करामी ने पुनः मंत्रिमंडल को कायम किया, परंतु लेबनान में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ सकी और 10 अप्रैल 1966 ईस्वी को अब्दुल्ला अल याफी का मंत्रिमंडल बना, जिसे जून 1967 में अरब इजराइल युद्ध का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में लेबनान में अरबों के बीच भीषण उत्साह था, जबकि ईसाइयों के बीच कोई जोश नहीं था, परंतु लेबनान को अंत में अरब लीग के आह्वान पर झुकना पड़ा। युद्धकाल में लेबनान ने पाश्चात्य देशों को तेल भेजना बंद कर दिया एवं ब्रिटेन और अमेरिका से अपने दूत वापस बुला लिए। युद्ध के अंत के बाद भी लेबनान ने इजराइल विरोधी आंदोलन जारी रखा और अरब गुरिल्ले लेबनान होकर जाते रहे। इस दिशा में सरकारी प्रतिबंध का जबरदस्त विरोध हुआ और 4 नवंबर 1968 को छात्रों ने एक भीषण आंदोलन कर दिया, जिसके कारण अब्दुल्ला याफी ने त्याग पत्र दे दिया, परंतु यह स्वीकृत नहीं हुआ। इसी समय 26 सितंबर को अरब गुरिल्लों ने एथेंस में एक इजरायली वायुयान पर आक्रमण किया और जवाब में इजरायली सैनिकों ने बैरूत में एयरपोर्ट पर 13 वायुयानों को जलाकर खाक कर दिया। अतः 7 जनवरी 1969 को अब्दुल्ला याफी ने पुनः त्याग पत्र दिया, जिसे राष्ट्रपति हेलू ने स्वीकृत कर लिया और रशीद करामी को मंत्रिमंडल की स्थापना के लिए आमंत्रित किया। इसने 5 जनवरी को एक राष्ट्रीय मंत्रिमंडल कायम किया और देश में एकता एवं संगठन लाने की दिशा में प्रयत्नशील हो गया। लेकिन इस काल में देश भर में फिलिस्तीनी गुरिल्ले भरे हुए थे, जो कि इसराइल की सीमा में घुसकर आक्रमण करते थे तथा प्रत्युत्तर में इसराइल लेबनान के अंदर घुस जाता था। इसके साथ ही गुरिल्लों के आने से मुस्लिम आबादी में वृद्धि हो गई तथा पुराने राष्ट्रीय समझौते के औचित्य को चुनौती दी जाने लगी। 1970 में देश में हेलू के स्थान पर फ्रांजिए नए राष्ट्रपति बने। सुलेमान फ्रांजिए 1972-1976। सुलेमान फ्रांजिए हेलू के उत्तराधिकारी बने, लेकिन देश के अंदर ईसाइयों ने भी अपने संगठन बना लिए एवं दंगे होने लगे। परिणामतः मंत्रिपरिषद बनाने तथा बिगड़ने लगे और 23 मई 1975 को शासन का भार ब्रिगेडियर नूरुद्दीन रिफई नामक सैनिक अधिकारी को दे दी गई, लेकिन इसने शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया। पुनः 24 मई को रशीद करामी प्रधानमंत्री बने। देश में संकट के बादल छाए रहे तथा गृह युद्ध का वातावरण कायम रहा, अतः 19 जनवरी 1976 को इसने भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह समस्या बनी रही। इसी काल में 1 जून 1976 को सीरिया ने लेबनान में गृह युद्ध के अंत करने के लिए अपनी फौजें भेज दी। लेबनान सीरिया की फौजों के आगमन के बाद भी गृह युद्ध से मुक्ति नहीं पा सका। ईसाइयों एवं फिलिस्तीनियों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहा और रशीद करामी के हटाने के बाद प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया। तत्पश्चात 8 मई 1976 को राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हुए और एलिया सारकिस नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 13 सितंबर को अपना कार्यभार संभाला। एलियास सारकिस 1976 से 1981, इनके काल में गृह युद्ध कुछ दिनों के लिए थम गया, परंतु कुछ दिनों के बाद पुनः उभर गया। सीरिया की फौजों की उपस्थिति से अब अरब छापामारों को सुरक्षा थी, अतः इसराइल के छापामार भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहे। प्रधानमंत्री का पद संभालने को कोई महत्वपूर्ण नेता तैयार नहीं हुआ। इसके विपरीत मिस्र ने इसराइल के साथ संधि कर लेबनान के फिलिस्तीनी अरबों की दशा और भी खराब कर दी। इन कारणों से लेबनान अशांत क्षेत्र बना हुआ है और यहाँ के ईसाई स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। लेबनान की वैदेशिक नीति क पड़ोसी राज्यों से संबंध। लेबनान की वैदेशिक नीति उसकी आंतरिक अर्थव्यवस्था, भौगोलिक पृष्ठभूमि एवं ईसाई आबादी से प्रभावित रही। भौगोलिक दृष्टि से लेबनान एक अरब राज्य था तथा यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी काफी थी। अतः लेबनान ने मार्च 1945 ईस्वी में अरब लीग की सदस्यता स्वीकृत की और 1948 ईस्वी के इसराइल विरोधी युद्ध में अरब देशों का साथ दिया। परंतु अरब राजनीतिक एकता एवं बृहत्तर सीरिया की योजनाओं का लेबनान ने सर्वदा विरोध किया। इसी कारण बृहत्तर सीरिया आंदोलन के नेता एंटन सादेह को 1939 ईस्वी के जुलाई के मौत की सजा दे दी गई। अरब लीग के सम्मेलनों में भी लेबनान सदा अरब राज्य की क्षत्रिय संप्रदा पर बल देता रहा। पाश्चात्य देशों से घनिष्ठ संपर्क भी इस सिलसिले में सहायक था, परंतु राज्यों से घिरे रहने के कारण लेबनान आर्थिक दृष्टि से अरब सहयोग को ठुकरा नहीं सकता था। अतः लेबनान ने आरंभ से ही एक संतुलन की नीति अपनाई। एक ओर उसने पाश्चात्य देशों को पूर्ण प्रश्रय दिया तथा दूसरी ओर अरब लीग के साथ भी संपर्क रखा। 1955 ईस्वी में जब बगदाद संधि का प्रस्ताव लेबनान के समक्ष आया तो उसने तटस्थता की नीति अख्तियार की और न तो उसमें सम्मिलित हुआ और न नवनियोजित कैरो रियाद धूरी में ही, परंतु उसकी इजराइल विरोधी नीति के कारण सर्वदा इजराइल से टक्कर होती रहती थी। अतः सीरिया से 1955 ईस्वी में ही सैनिक संधि के लिए दबाव डाला जाना आरंभ हो गया। इसमें अरब राज्यों को सफलता प्राप्त नहीं हुई और लेबनान के शासक राष्ट्रपति शामू ने पाश्चात्य पक्ष नीति का उद्घाटन किया। इसने 1957 ईस्वी के आरंभ में ही आइजनहावर सिद्धांत को मान्यता दे दी और अमेरिका से अस्त्र शस्त्र लेना आरंभ कर दिया। इस काल में अरब क्षेत्र भीषण उथल फुथल से गुजर रहे थे। मिस्र ने स्वेज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिससे एक राजनीतिक बावेला खड़ा हो गया, परंतु लेबनान ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। इस काल में अरब राज्य रूस के नज़दीक आ रहे थे और वे अमेरिका की नीति को अरब स्वार्थों के विरुद्ध समझते थे। इनके विपरीत राष्ट्रपति शामू की अपनी योजनाएं थी जिनके लिए वह अमेरिकी सहायता का आकांक्षी था, परंतु देश के अंदर ही इस नीति का तीव्र विरोध हुआ और लेबनान के अरब निवासियों ने मई 1958 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और तेल के पाइपलाइनों को काट दिया तथा यत्र तत्र अमेरिकी सूचनाओं को जला दिया। लेबनान ने इसके लिए संयुक्त अरब को दोषी ठहराया और मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके जांच के लिए एक प्रेक्षक दल लेबनान में भेजा, परंतु इस दल ने 3 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश की और लेबनान के दोषारोपणों को निराधार घोषित किया, परंतु इससे लेबनान के संबंध में अरब राज्यों से और भी कटु हो गए और 14 जुलाई 1952 ईस्वी में इराक में राज्य क्रांति होने पर शामू ने अमेरिका से सैनिक सहायता की अपील की और 10,000 अमेरिकी नौसैनिक लेबनान पहुंचा दिए गए। इससे अरब राज्य आशंकाग्रस्त हो गए और संयुक्त राष्ट्र संघ में इनके हटाने की मांग रखी गई। अंत में संयुक्त राष्ट्र ने भी एक विशेष अधिवेशन में इस मांग का समर्थन किया। अंततः अक्टूबर के मध्य में ये फौजें हटा ली गई। इसी बीच शामू का कार्यकाल समाप्त हो गया और नवीन राष्ट्रपति जनरल सेहाब तथा प्रधानमंत्री रशीद करामी ने अरबों के साथ सहयोग की नीति अपनाई। इसके फलस्वरूप लेबनान ने अरब लीग की कार्यवाहियों में खुलकर भाग लेना आरंभ किया और इसराइल विरोधी आंदोलन का भी समर्थन किया। परंतु देश के अंदर अमरीकी प्रभाव भी था, अतः आंतरिक संघर्ष चलते रहे। लेबनान ने अरबों की फौजी संगठनों में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखलाई। 1964 ईस्वी में नवीन निर्वाचन के पश्चात चार्ल्स हेलू राष्ट्रपति बने और इसके बाद लेबनान फिर से पाश्चात्य देशों के नज़दीक आने लगा। वास्तव में इस काल में अरब राज्यों में ही पारस्परिक फूट एवं बैर के बीच कायम रहे और लेबनान ने वैदेशिक नीति में अरब लीग के प्रति सहयोग करते हुए भी अरब राज्यों को वैदेशिक क्षेत्र में पूर्ण सहयोग देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। परंतु अरब लीग का इसराइल विरोधी संघर्ष उग्रतर होता गया और सीमा संघर्ष से तनाव निरंतर कायम रहे और लेबनान में अरबों की सहानुभूति सर्वदा अरब राज्यों के प्रति रही। फलतः जून 1967 के संग्राम में लेबनान ने अरब लीग का साथ दिया और ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य को तेल भेजना बंद कर दिया और अपने दूतों को वापस बुला लिया। परंतु अक्टूबर में तेल पर रोक हटा लिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुनः लेबनान को अस्त्र शस्त्र देना आरंभ कर दिया। लेबनान में अरब उग्रवादी इस काल में देश की वैदेशिक नीति में प्रमुख हाथ बटाते रहे और बेरूत पोर्ट पर दिसंबर 1968 में इजरायली अफ्रीकन एक गुरिल्ला केंद्र होने के कारण ही हुआ। अतः अरब लीग से सानिध्य अब लेबनान को की वैदेशिक नीति का प्रमुख आधार बन गया है। ख, पाश्चात्य देशों के साथ संबंध। युद्धोपरांत काल में लेबनान ने विश्वव्यापी दो गुटों में अमरीकी गुट को प्राथमिकता दी तथा इसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। बेरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी अमेरिकी संपर्क का प्रमुख केंद्र था। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने सऊदी अरब से तेल के पाइप लेबनान के बंदरगाह सैदा तक बिछाए थे। अमेरिकी वायुयान सेना एवं तेल कंपनी लेबनान में संगठित थी और आर्थिक दृष्टि से लेबनान अमेरिका के काफी निकट था। लेबनान ने सोवियत यूनियन से संबंध बनाए रखा परंतु अधिकांश पूर्वी यूरोपीय राज्यों को मान्यता नहीं दी तथा आंतरिक क्षेत्र में साम्यवादियों का सदा दमन किया। इसराइल विरोधी युद्ध में यद्यपि लेबनान ने अरब राज्यों का पक्ष लिया परंतु युद्ध के पश्चात और राज्यों की तरह यहां घृणा तथा द्वेष की तीव्र भावना कम रही। तत्पश्चात 1950 ईस्वी में कोरिया युद्ध में लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र का पक्ष लिया। इस काल में सर्वदा लेबनान को अमरीकी आर्थिक सहायता प्राप्त रही परंतु लेबनान अरब लीग से भी सहयोग एवं संपर्क कायम रखना चाहता था। अतः कालक्रम से लेबनान की वैदेशिक नीति में भी पाश्चात्य विरोधी तत्व घुस आए। अरब लीग के विरोध के कारण ही लेबनान ने बगदाद संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। परंतु 1957 ईस्वी में लेबनान ने आइजनहावर के रिक्तता सिद्धांत को स्वीकृत कर अमेरिकी सहायता लेना स्वीकार किया। इसके पीछे राष्ट्रपति शामू की व्यक्तिगत राजनीतिक महाभिलाषाएं थी। इस नीति परिवर्तन ने शीघ्र ही लेबनान को अरब देशों से विमुख कर दिया और सोवियत रूस भी इसका विरोधी हो गया। इसके फलस्वरूप देश के अंदर साम्यवादियों एवं अरब ने सरकार का विरोध करना आरंभ किया, जिसने 1952 ईस्वी के आरंभ में व्यापक रूप धारण कर लिया। लेबनान ने फिर भी राष्ट्रपति शामू के नेतृत्व में अमेरिका के प्रतिनीति में परिवर्तन नहीं लाया और 1952 ईस्वी के इराकी क्रांति के अवसर पर अमरीकी फौज सहायता की याचना की। इसके उत्तर में अमेरिका ने 10,000 नौसैनिक लेबनान में उतार दिए। इसके कारण सर्वत्र खलबली मच गई और रूस ने अरब वासियों का पक्ष लेकर संयुक्त राष्ट्र में इन फौजों को हटाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने 23 अगस्त 1958 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा इनके हटने की मांग रखी, जिसे अमेरिका को मानना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप लेबनान अमरीकी संबंध पर भी पड़े। 1958 ईस्वी में 23 सितंबर को शामू के स्थान पर जनरल सेहाब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और रशीद करामी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने शामू की नीति का परित्याग कर दिया और आइजनहावर सिद्धांत को अमान्य घोषित कर दिया। इस काल में रूस का प्रभाव भी लेबनान में बढ़ता दृष्टिगोचर हुआ और बेरूत में रूसी कार्यालयों के सदस्यों की संख्या में काफी वृद्धि हुई तथा यह अरब क्षेत्र का महान कार्यालय बन गया। परंतु लेबनान को अमेरिकी आर्थिक सहायता सर्वदा प्राप्त होती रही। 1964 ईस्वी में जब चार्ल्स हेलू ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, तब भी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया और अभी भी अरब राज्यों के बीच लेबनान पाश्चात्य राज्यों का विशेष कृपा पात्र है। परंतु अरब इसराइल युद्ध में लेबनान में अरबों का पक्ष लिया, अतः इसे भी इसराइली आक्रमण का शिकार होना पड़ा। इसके पश्चात लेबनान में काफी अरब गुरिल्ले घुस आए तथा वहां के जनजीवन को अशांत कर डाला है। यद्यपि चतुर्थ अरब इजरायली युद्ध में लेबनान ने भाग नहीं लिया, परंतु अरबों के केंद्र यहां रहे तथा इसराइल के आक्रमण का शिकार बने रहे। लेबनान में गृह युद्ध का वातावरण कायम रहा तथा 1 जून 1976 को सीरिया की फौजों ने यहां हस्तक्षेप किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत रूस का समर्थन प्राप्त हुआ। इस तरह लेबनान की स्थिति काफी दयनीय हो गई और यह क्षेत्र आंतरिक संघर्ष का स्थल बन गया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लेबनान ने इसराइल विरोधी नीति जारी रखी है और मिस्र इसराइल संधि का विरोध किया है। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।